हम सब सीख रहे हैं इफिसियों 5 बाब में से कि कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे। और बाइबल मुकद्दस हमें बहुत सी बातों से खबरदार करती है कि उनसे खबरदार रहो। 5 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। और कल हमने गुज़श्ता दिनों में हमने सीखा था कि पालूस रसूल कहता है तुम भी ऐसे दौड़ो ताकि जीतो, जैसे पहलवान हर तरह का परहेज करता है ताकि अपने आप को अखाड़े में उतरने से पहले, उस पहलवान से लड़ने से पहले अपने आप को आजमाता है कि मैं इस काबिल हूं कि लड़ सकूं। वैसे ही एक दौड़ दौड़ने वाला दौड़ के मैदान में दौड़ने से पहले अपने आप को आजमाता है ताकि वो इस तरह दौड़े कि ताकि जब वो दौड़े तो जीते। पालूस रसूल भी ईमानदारों को कहता है कि मसीही जिंदगी भी एक दौड़ की मानत है, ऐसी दौड़ की मानत जो हम सब दौड़ रहे हैं। और इस दौड़ में बहुत से दौड़ रहे हैं लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। और वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि बहुत से ईमानदार हैं जो मसीही जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ईमानदारों में से कुछ लोग हैं जो अपनी मेहनत के बायस खुदा की हजूरी में अजर पाएंगे। इसलिए जब खुदा यीशु मसीह तख्ते अदालत के सामने हम सबको खड़ा करेगा, हमसे पूछेगा, तो वहां पर बहुत से ईमानदारों को अजर मिलेगा और बहुत से ईमानदारों को अजर नहीं मिलेगा। क्यों? हो सकता है कि जमीन पर उन्होंने सिर्फ इसी बात पर यकीन किया कि यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा और हमेशा की जिंदगी मिल गई, और उसके बाद सलीब से लेकर अब दी जलाल तक उन्होंने कुछ भी ना किया। इसलिए आए हम पालूस रसूल से इस खबरदारी के बारे में सीखें, इस आगाही के बारे में सीखें। पालूस रसूल कहता है कि हम सबको खुदावन्द यीशु मसीह ने किस लिए इस दौड़ में इस आजादी की जिंदगी के लिए बुलाया है। तो गलतियों 5 बाब उसकी पहली आयत से जब हम पढ़ते हैं तो पालूस रसूल कहता है मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुड़ो। गुलामी का जुआ क्या है? वो बातें, वो जंजीरें, वो रसूमात जो खुदा की नहीं है बल्कि इंसान की हैं। और गलतियों की कलीसिया में ऐसा ही हुआ, जब झूठे उस्ताद आए तो उन्होंने क्या करना शुरू किया कि तुम्हें निजात किसके वसीला से है? यीशु मसीह के वसीला से नहीं बल्कि ईमान के वसीला से। और उनको फिर वो तमाम पुरानी रसूमात में फंसा दिया कि अगर तुम 10 हुक्मों पर अमल करोगे एक भी तोड़ा तो तुम्हें निजात नहीं मिलेगी, इसलिए तुम्हें उसकी पाबंदी से पूरा उतरना है, तुम्हें बहुत सी दूसरी रसूमात करनी है। और यहां पर पालूस रसूल उनके बारे में कहेगा, दूसरी आयत देखें, देखो मैं पालूस तुमसे कहता हूं कि अगर तुम खतना करवाओगे तो मसीह से तुमको कुछ फायदा ना होगा। इन झूठे उस्तादों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि जो कोई खतना करवाएगा उसे निजात मिलेगी, उसे बहुत ज्यादा फायदा होगा। पालूस कहता है कि मसीह में तुमको कुछ फायदा ना होगा। तीसरी आयत, बल्कि मैं हर एक खतना करवाने वाले शख्स पर फिर गवाही देता हूं कि उसे तमाम शरीयत पर अमल करना फर्ज है। पालूस रसूल उनके जो बयानात थे उनके मुकाबले में कहता है कि अगर ये कहते हैं कि खतना करवाना लाजमी है तो फिर उसके साथ पूरी शरीयत को मानना भी लाजमी है। और कहता है कि अगर कोई एक शरीयत के एक हुक्म को ही तोड़ता है तो वो सारी शरीयत का क्या है? गुनाहगार है। तो इसलिए कहता है कि जो कोई कहता है कि इन बातों पर अमल करो तो फिर पूरा अमल करो। जैसे बहुत दफा हम सब्बत का दिन कहते हैं कि हम सब्बत के दिन के लिए अपने आप को तैयार करें, लेकिन हम बहुत दफा उस पर अमल नहीं करते। हमें सब्बत का हम कहते हैं कि आज खुदावंत का सब्बत है, बहुत दफा हम सब्बत की ताबेदारी नहीं करते। ऐसा ही है जी। तो पालूस रसूल उनको याद दिलाता है कि तुमको खुदा के फजल से क्या कुछ मिला है। चौथी आयत, تم جو شریعت کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے ٹھہرو. یہ ان استادوں کو جو اس جگہ پر کھڑے کہتے تھے کہ نہیں نہیں میرے پیچھے چلو تم کو بہت برکت ملے گی, تم راست باز ٹھہرو گے, تمہیں خداوند کی حضوری میں تم خداوند کے تخت کے سامنے اعزاز ملے گا. پالوس کہتا ہے جو شریعت کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں مسیح سے الگ ہوں گے اور فضل سے ٹھہرو, کیونکہ کوئی جان بھی شریعت کے وسیلہ سے راست باز ٹھہر نہیں سکتی سوائے یسوع مسیح کے, کوئی بھی اس زمین پر نہیں ہوا جس نے کبھی بری شریعت پر عمل کیا ہو, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گناہ کیا. اسی لیے یسوع مسیح نے اپنا دائنا ہاتھ اٹھا کر کہا تھا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ظاہر کرے. تو شریعت کا دینے کا مقصد کیا تھا؟ بنی اسرائیل قوم نے دوسری قوموں کو دیکھا کہ ان کے رواج یہ ہیں کہ جی اپنے بت کے سامنے خوشبودار چیزیں پیش کریں, ان کے رواج یہ ہیں کہ جی ان کے حاکم ہیں ہمیں بھی حاکم ملنا چاہیے, ان کا بادشاہ ہے ہمارا بھی بادشاہ ہونا چاہیے, ان کی ریتی رسم و رواج ہیں. اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمارا بھی بادشاہ ہو ہمارا بھی طریقہ کار ہو. تو خدا نے ان کو ایک چھوٹی سی لسٹ دی, 10 حکم دیے. جب 10 حکم دیے تو 10 حکموں کے ساتھ کیا آئی؟ بہت سی دوسری رسومات آئی. خدا نے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کی عزت کرنا, اگر عزت نہ کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں یہ قربانی چڑھانی ہوگی. بنی اسرائیل قوم نے کہا ہاں ہم یہ کریں گے. تو کسی غیر معبود کو نہ ماننا, اگر تو مانے گا تو میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ ناراض ہوں گا اور پشت در پشت سے بغاوت رکھوں گا. لیکن اگر تم بت پرستی کرو تو اس کے عز میں تمہیں برا دینا ہوگا, وہ برا بیابان میں چھوڑ آنا اور وہ تمہارے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا. سو ہر حکم کے ساتھ کیا آیا؟ کوئی نہ کوئی رسم آئی. اور یہ کس لیے؟ کیونکہ انسان چاہتا تھا کہ مجھے خدا تو لسٹ دے دے تاکہ میں اپنی لسٹ کو چیک کر لوں ہر روز کہ میں نے ماں باپ کی عزت کی, میں نے خدا کو مانا, میں نے سبت کا دن پاک مانا, میں نے چوری نہیں کی, میں نے جھوٹ نہیں بولا, میں نے گناہ نہیں کیا, میں نے پرائی عورت کو نہیں دیکھا, دوسرے کے مال پر نگاہ نہیں کی. اور جب وہ کرتے تھے اس کا ہدیہ, اس کی قربانی, اس کے ازالے میں کوئی نہ کوئی رسم, کوئی نہ کوئی حکم کو تابع داری کرنی تھی. تو یہ پالوس اصول ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا تھا جو اپنے آپ کو راست باز نجات دہندہ سے بغیر نجات پانے کی کوشش کر رہے تھے. پالوس کہتا ہے کہ وہ مسیح سے الگ اور فضل سے محروم ہے, کیونکہ فضل ہی سے ہر ایک کو نجات ملتی ہے. اگر فضل سے نجات نہ ہوتی تو پھر یسوع مسیح کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں. آج یسوع مسیح کی صلیب اسی لیے خالی ہے کیونکہ وہ صلیب پر نہیں بلکہ اپنے کام کو مکمل کر کے خدا کی داہنی طرف بیٹھا. تو آگے پالوس کیا کہتا ہے؟ 5 آیت. کیونکہ ہم روح کے باعث ایمان سے راست بازی کی امید بر آنے کے منتظر ہیں. کس کے باعث؟ روح کے باعث ایمان سے راست بازی. میرا بندہ راست باز کہاں سے جیتا رہے گا؟ ایمان سے. ابراہم کہاں سے ایماندار ٹھہرایا گیا؟ کہاں کیسے ٹھہرایا گیا؟ ایمان سے. جب اس نے خداوند خدا کی بات کو مانا کہ تو اپنے نادے داروں کو چھوڑ, اور وہ ایمان لایا, اور ایمان اور پیدائش کی کتاب اس کے 22 باب میں لکھا ہے کہ یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا. تو ایمان سے ہمیں کیا ہے؟ راست بازی ملتی ہے, اور اسی لیے ہم منتظر ہیں کہ یسوع مسیح آئے گا. 6 آیت. اور مسیح یسوع میں نہ تو کتنا کچھ کام کا ہے نہ نامختونی, مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے. پالوس رسول نے اس لوگوں کو کہا کہ اگر تمہارا کتنا ہوا ہے تب بھی ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوا تب بھی کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے. جو بات اہم ہے وہ کیا ہے؟ ایمان سے اور ایمان کے وسیلہ سے جو محبت تمہیں خدا کے ساتھ ہے, اور اس محبت کے اثر سے جو خدا نے ہم سب کو دکھائی ہے. اس لیے 7 آیت میں پالوس رسول ان کو خبردار کرتا ہے, سب میرے ساتھ इस आयत को कहें, तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे। किसने तुम्हें हक के मानने से रोक दिया? पालूस रसूल कलीसिया से ये सवाल करता है, तुम अच्छी तरह दौड़ रहे थे, किसने तुमको बहका दिया, किसने तुमको गुमराह कर दिया, किसने तुमको हक के मानने से रोक दिया है? और इसीलिए पालूस रसूल, मेरे साथ देखे पहला करंथियों उसका नामा बाप, जो पहले हवाला हमने पढ़ा था, जब हम देखते हैं 24वीं आयत, तो वहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं, मगर अनाम एक ही ले जाता है। पहला सवाल करता है, तुम भी ऐसे दौड़ो ताकि जीतो। दौड़ यानी कि ऐसी दौड़ में बहुत दफा जो लोग दौड़ के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, वो सीधे रास्तों पर नहीं दौड़ते, वो पहाड़ी इलाके में ऊबड़ खाबड़ रस्तों पर दौड़ते हैं, ताकि जब वो दौड़ें तो उनकी प्रैक्टिस और उनके पांव की ताकत इतनी मजबूत हो कि जब वो सादा रोड उस दौड़ के ट्रैक पर दौड़ें तो उनको कोई मसला ना हो। तो पालूस रसूल कहता है, तुम भी ऐसे दौड़ो ताकि जीतो। और वहां पर एक और मिसाल देता है, हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। पहलवान की वो मिसाल देता है, परहेज करता है और कहता है, ये सब लोग क्या करते हैं, मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये सब मेहनत मुशक्कत करते हैं, लेकिन हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। और इसीलिए पालूस कहता है कि मैं भी अपने बदन को कब्जा कंट्रोल में रखता हूं, अपनी मसीही जिंदगी के चाल चलन पर निगाह करता हूं, निजात के लिए नहीं बल्कि उस अजर के लिए। जब यीशु मसीह की हजूरी में खड़े होंगे तो वो कहेगा, बेड़ा शबाज तूने क्या किया, मेरे दिए हुए उस फजल और उन बरकात को, मेरा कलाम जो तूने तुझे दिया गया था उससे क्या किया, मेरी बेटी नगीना तूने क्या किया, क्या है तेरे पास मुझे पेश करने के लिए? क्योंकि ये अजर जो हमें मिलने वाला है मिलेगा हमारी मेहनत के बायस, हमारी मसीही जिंदगी के बायस, वो एक दिन हम खुदा यीशु मसीह के कदमों पर ढेलेंगे। जैसे तीन बादशाह मशरक से आए और उन्होंने तोहफे दिए, ईमानदारों क्या हम खाली हाथ उसकी हजूरी में जाएंगे या फिर अपने साथ उन तोहफों को, उन बरकात को जो एक दिन उसी की हजूरी में उसके हजूर पेश करेंगे। पालूस रसूल इसीलिए कलीसिया को कहता है, गलतियों मेरे साथ देखें फिर पांचवा बाप उसकी सातवीं आए, तुम तो अच्छी दौड़ दौड़ रहे थे, किसने तुमको तुम्हें हक के मानने से रोक दिया? कहता है, ये तकलीफ तुम्हारे बुलाने वाले की तरफ से नहीं है, थोड़ा सा खमीर सारे गुंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। मुझे खुदावन में तुम पर यह भरोसा है कि तुम और तरह का ख्याल ना करोगे, लेकिन जो तुम्हें घबरा देते हैं वो का कोई हो सजा पाएंगे। थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खराब कर देता है, जैसे थोड़ा सा नींबू का पानी दूध में डालें तो सारा दूध खराब हो जाता है, थोड़ी सी दही दूध में डालें तो दूध खराब हो जाता है, वैसे थोड़ा सा खमीर आटे में डालें तो सारा आटा खमीर हो जाता है। और यहां पर बाइबल मुकद्दस में जब कभी भी खमीर की बात की गई है तो खमीर गुनाह की तरफ, नाफरमानी की तरफ और उन बातों की तरफ इशारा है जिनसे ईमानदारों को कोई फायदा नहीं। आज हमें अपनी जिंदगी में देखने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी में कोई खमीर तो नहीं, कोई खमीर जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं, जो खमीर जो हमने अपने बाप दादा से संभाला हुआ है, जैसे लाबन ने। मुझे हंसी आती है जब मैंने यकूब की फिल्म देखी कि लाबन अपने उन बनाए हुए बुतों की परस्तिश करता है, और उसकी बेटी जब उन बुतों को चुरा के ले जाती है, वो कहता है कि मेरे खुदा किसी ने चुरा लिए। मुझे हंसी आती है कि वो कैसा खुदा है जो कि अपनी खुद देखभाल नहीं कर सकता कि उसे चुरा कर उसकी बेटी ले गई। हमारा खुदा बुत नहीं कि कोई उसे अपने झोले में डाल कर ले जाए। इसलिए कोई अगर खमीर हमारी जिंदगी में है तो उसे देखें, उस पर गौर करें, क्योंकि नया साल आने वाला है। हम मसीह की पैदाइश के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जितनी रियाजत, जितनी तैयारी हम जमीन पर कर रहे हैं, ये इसीलिए है क्योंकि आसमान पर हमारे काम आएगी। इसलिए थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को खराब कर देता है। वो खमीर नफरत का हो सकता है, वो खमीर हसद का हो सकता है, वो खमीर सियासत का हो सकता है, वो खमीर सास और बहू की लड़ाई का हो सकता है, वो खमीर बेटी और बेटे के जिंदगी में हो सकता है। इस खमीर को जो भी है अपनी जिंदगी में देखने की जरूरत है, ताकि हम सजा ना पाए। और कहता है कि जो कोई ये तुमको कहता है कि इससे कोई फायदा नहीं, उनको सजा मिलेगी। कोई तुमको घबरा ना दे, कोई तुमको घुमरा ना करे, इसलिए अगर नफरत है तो मोहब्बत का फल लगना चाहिए, अगर हसद है तो हसद की बजाय खुदा की रूहानी खुशी का फल हमारी जिंदगी में लगना चाहिए। अगर गुस्सा और तकरार है, लड़ाई और झगड़ा है, तो मेहरबानी का फल हमारी जिंदगी में लगना चाहिए, वरना हमारी इबादत कड़वा सच है, गौर से सुने, बेफायदा है। पालूस यही कहता है, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, पहाड़ों को हिला दूं, मुझे कुल इलम हासिल हो, मुझे हर भेद से वाकिफियत हो कि खुदा ने किस तरह मछली को बनाया, किस तरह उसके अंदर उस कांटों की कंघी को डालकर उस पर गोद चढ़ाया, किस तरह उसने ऊंट को ये कद बख्शा, किस तरह उसने हाथी की चमड़े के तह को कितना मोटा बनाया। अगर मुझे इन तमाम चीजों का आसमानी और जमीनी भेदों की वाकिफियत हो और मोहब्बत ना हो, तो मुझे कुछ फायदा नहीं, मुझे कुछ फायदा नहीं। तो इस दौड़ में इस बात पर खत्म करेंगे, इब्रानियों 12 बाब उसकी पहली आयत। तो अपनी जिंदगी में हमें इस खमीर को देखने की जरूरत है, और उस खमीर को इससे पहले के वो हमारे दिलों को सख्त कर दे, गुनाह की जड़ इतनी मजबूत हो जाए कि हमारी जिंदगी सख्त हो जाए, देखने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। अब्रानियों 12 बाब उसकी पहली आयत। पालूस रसूल अपने ईमानदारों को जो उसकी बात सुनते हैं उनसे कहता है, खबरदार। और यहां पर अब्रानियों का मसनफ लिखते हुए कहता है, पस जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, कौन से गवाह? जैसे हमारे इर्द गिर्द मसीही गवाह हैं, वैसे ही 11वें बाप में वो तमाम ईमानदारों की तरफ इशारा करता है। तो हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो खमीर है, उस गुनाह को जो आसानी से उछाल लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दर पेश है। हमें इस दौड़ को सब्र से, हिकमत और दनाई से और बड़ी समझ के साथ दौड़ना वरना एक दिन आएगा, मुझे पता है कि मैं जब यीशु मसीह की हजूरी में खड़ा होऊंगा, आप अपनी जिंदगियों का जायजा लें, जब मैं खुदा यीशु मसीह की हजूरी में खड़ा होऊंगा, और बहुत से साल हैं जो मैंने, बहुत से साल, बहुत से महीने, बहुत से घंटे, बहुत से छोटे छोटे मिनट हैं जब खुदा यीशु मसीह मुझे आजमाएगा, जैसे आग सोने को साफ करती है और उसमें से मैल निकलती है। जब मुझे आजमाया जाएगा तो मुझे पता है कि बहुत ज्यादा साल, बहुत ज्यादा महीने जल कर खाक होंगे, उनका कोई अजर मुझे नहीं मिलेगा। और मुझे पता है कि वो काम जो मैंने जिस्म की ख्वाहिश में, जो काम मैंने रूहुल कुद्दस की नाफरमानी में किए हैं, उनका मुझे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, जो काम मैंने रूह की हदायत में किए हैं उनको कोई भी मिटा नहीं सकता, खुदा खुद भी बेईमानी नहीं करेगा। सो इसलिए पालूस रसूल हमें यह हुक्म देता है। एक और आयत पढ़ेंगे और फिर खत्म करेंगे। गलतियों 5 बाब, गलतियों 5 बाब उसकी गालबन 24वीं आयत, गलतियों 5 बाब उसकी 24वीं आयत, माजो चाहता हूं 25वीं आयत। सब कहेंगे अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। आमीन। अगर हम रूह के मुआफिक जिंदा हैं, रूह हमारी जिंदगी में आया है, तो उसके मुआफिक चलना चाहिए। आए हम खुदा के जुड़ चुके हैं।